खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में,
हमारी राहों में
खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में,
हमारी राहों में।
आज बसे प्यारे प्रभु जब से इन निगाहों में,
हमारी राहों में।
ओम शांति। अभी अभी बाबा सबसे पहली दफा आए थे 25 अक्टूबर को, तो बाबा ने बच्चों को विशेष एक होमवर्क दिया कि बाबा ने कहा बच्चों का बाप क्या देखना चाहता है, चेहरा और चलन देखना चाहता है। जो इतने साल से ज्ञान सुना है तो उसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी चाहिए ना, तो सुनने के लिए ज्ञान नहीं है तो सुनने के बाद उसको आचरण भी कितना लाया है। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों की चलन और चेहरा देखना चाहता है, लेकिन चेहरा कैसा हो, प्रसन्न हो। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए चेहरा किसका प्रसन्न रहेगा, जो आत्मा सब प्रकार से भरपूर है, तृप्त है। अगर किसी प्रकार की असंतुष्टता अगर है तो प्रसन्नता तो नहीं होंगे ना, तो वो कैसे हो, किस प्रकार से हो। इसलिए इसके पहले पिछले साल जब बाबा आए थे, बाबा ने भी उस समय भी होमवर्क दिया था और बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिया था। और आज अगर अपने ध्यान से मुरली सुनी हो, आज सवेरे भी बाबा ने कहा था कि बच्चे संगम युग को एक वरदान है। कौन सा है वरदान संगम युग को? संगम युग पर आप जितनी चाहे उतनी कमाई करके अपने आप को, अपने खजानों को भरपूर कर सकते हो। तो सिर्फ सारे कल्प के अंदर ये संगम युग एक ऐसा युग समय है, इस समय के अंदर आप जितना चाहे रूहानी कमाई जमा कर सकते हो। और इसके पीछे भी बाबा ने कहा था, पिछले साल होमवर्क दिया था कि आपके साथ जाते समय क्या जाएगा, सिर्फ ये तीन खजाने आपके साथ जाएंगे, बाकी सब कुछ यहां छोड़ के जाना है। तो वो तीन खजाने आपने कितना जमा किया है उसका चेकिंग करके देख लो, और इसी के आधार से सारे कल्प में आप सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर सकते हो। अगर सारे कल्प में सुख शांति चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, वो किस आधार से मिलेगा कि संगम पर आपने ये तीन प्रकार के खाते कितना परसेंटेज जमा किया है वो आप अपने आप को देख सकते हो। लेकिन कैसे देखेंगे और कौन से तीन खजाने वो, याद है जिसने अच्छी तरह से होमवर्क किया है और उसका रिजल्ट इस साल बाबा ने कहा अगर खजाने जमा है भरपूर है तो अपने आप प्रसन्न है मनुष्य, इच्छा नहीं होती है। नहीं तो कलयुग के दुनिया के अंदर माया का पंप है ये, हर सेकंड देख लो हर प्रकार की न्यू इन्वेंशन है, अल्पकाल के आकर्षण सुख देने वाले बहुत सारे चमत्कारी चीजें हैं, उसको बाबा कहते हैं माया का पंप है ये, आकर्षण है। उसको देखते अगर अंदर आत्मा खाली है कहीं ना कहीं आकर्षित हो जाता है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, वैभव हो। बहुत सेवा करने के बाद मान शान मिलता है ना, रिस्पेक्ट चाहिए, रिगार्ड चाहिए, ये सब मनुष्य को आकर्षित करता है, लेकिन ये सब अल्पकाल के लिए है। लेकिन बाबा ने ऐसे होमवर्क दिया था पिछले साल कि तीन प्रकार के खजाने, एक बाबा ने कहा स्वयं के पुरुषार्थ से, वो आपके हाथ में है, जितना चाहे आप स्वयं के पुरुषार्थ से कितने खजाने जमा किया है। वो स्वयं का पुरुषार्थ कौन सा है? एक है सवेरे उठते ही अमृत वेले विधि पूर्वक, अगर जितने आप बाबा को याद करते हो, सर्वशक्तिवान शिव बाबा से जितने खजाने जमा करना चाहते हो, कौन से वो? सर्वशक्तियों के खजाने। क्यों? शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, विधि है, अपने को आत्मा समझकर, नहीं तो हमारे से भी ज्यादा दुनिया में बहुत बाबा के बच्चे हैं भगवान को याद करने वाले, बहुत भगवान को याद करते हैं, फिर भी शास्त्रों में भी कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। तपस्या ही सब कुछ नहीं है, लेकिन वो तपस्या, वो बाबा की याद विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। और वो बाबा ने संगम पर आकर के हम बच्चों को एक विधि दी है। कौन सी विधि है? कि पहले अपने को आत्मा समझो। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारे संकल्प हल्के नहीं होते हैं, तो वो ऊपर की ओर नहीं जाते हैं। अगर शरीर का थोड़ा भी परसेंटेज भी फीलिंग है तो हमारे संकल्प, देह और देह के संबंधित बहुत प्रकार के कर्म है, उसके विचार चलते हैं, और वो इस तरफ हॉरिजॉन्टल जाएंगे, यहां ही जाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे। अगर ऊपर हमारे वाइब्रेशन जाना कि शिव बाबा ऊपर है, बाप दादा ऊपर है, तो वहां तक हमारे संकल्प पहुंचना है सिर्फ आत्मा के ही, क्यों? आत्मा ऊपर से आई है, और आत्मा सिर्फ मैं आत्मा हूं कहने से आत्मा नहीं बनते हैं। बहुत समय का हमारे अंदर आदत बनी है कि मैं देह हूं, और दिखाई भी देता है, शरीर ही दिखाई देता है। जब भी आप आंखें खोलो शरीर ही दिखाई देता है। तो अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित करना है, उसके लिए विधि है। जब भी आप योग में बैठते हो अपने आप से बात करो, तो अपने में भी कौन है? मन और बुद्धि, ये दो चीजें हैं। तब बाबा ने कहा कि बच्चे एक सेकंड में मन बुद्धि को परमधाम में एकाग्र करो। आप पूछ लो, एक सेकंड छोड़ो, दस सेकंड ले लो, पचास सेकंड ले लो, आप एक मिनट ले लो, दस मिनट ले लो, योग में बैठो, मन बुद्धि ऊपर जाती है। यहां का देह का संबंध सबको भूलकर मन बुद्धि को अपने आप ऊपर नहीं जाता है। चाहे एक घंटा नहीं, दस घंटा बैठो आप, हम यहां बैठने से अपने आप वहां नहीं जाते हैं। चलने के लिए दो पांव चाहिए, और चलने की विधि भी है। तो ऐसे मन बुद्धि अपने आप नहीं जाती है, तो मन बुद्धि को परमधाम तक एकाग्र करना है तो उसकी विधि चाहिए, क्योंकि हमारा मन खाली नहीं है, बुद्धि भी खाली नहीं है। बुद्धि के पर बहुत प्रकार के प्रभाव है, उन सब प्रभाव से मुक्त करने के लिए तो मन बुद्धि को ऐसे काम देना पड़ेगा, तो तब ये मन बुद्धि आपके दिशा के अनुसार चलेगा। इसलिए सहज पहले, सबसे पहले अशरीरी बनने के लिए सिर्फ पांच प्रश्न चाहिए। मन प्रश्न करता है, मैं कौन? अगर ज्ञान सुनने के बाद भी अभी भी हमें महसूस है मैं मानस शरीर हूं, ये फीलिंग रहती है, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये इंजीनियर हूं, ये अंदर सूक्ष्म भाव रहता है, अगर बुद्धि ने अच्छी तरह से समझ लिया है, तुरंत बुद्धि कहती है मैं कौन? मैं वो आत्मा हूं जो सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। अपने आप बुद्धि तुरंत जवाब देती है, क्यों? समझ बुद्धि के अंदर अच्छी तरह से हुआ है। इसलिए कहते हैं श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद बुद्धि ने कितना समझ में समझ लिया है, इसलिए कहते हैं सुनने के बाद समझ में आया, पढ़ने के बाद समझ में क्या आया? तो समझ बुद्धि के अंदर है। तो ये मन और बुद्धि को एक करना है, इसका नाम है एकाग्रता। आज तक हमको संसार ने पढ़ाया है सिर्फ मन को लगाओ, मन तो लगा दिया लेकिन बुद्धि क्या कर रही है? अभी देखो आप यहां बैठे हो, आंखें खुली भी है, देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, उसके साथ साथ देखना बुद्धि के अंदर और कुछ विचार आता है, अरे आज इसको फोन करना था, और किसी ने कुछ कहा था, वो जागृत स्मृति कहते हैं, मेमोरी पावर, स्मृति जागृत हो जाती है, तब कहते हैं बुद्धि भटकती है, मन श्रवण करता है। तो इन दोनों शक्तियों को एक करना है, तो वहां एकाग्रता है। तो उसके लिए शुरू में एक अभ्यास चाहिए कि मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, मेरे सात गुण हैं आत्मा के, ये रोज जागृत करना पड़ता है। फिर मैं आत्मा शरीर में बैठ के क्या करता हूं, अगर कर्म करना है तो शरीर का उपयोग करता हूं, नहीं तो मैं स्वतंत्र अलग हूं। फिर पांचवा आता है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, कहां से आया था, मैं ऊपर से आया। अब हमारी यात्रा शुरू होती है, शरीर के भान से अपने आप को अलग करना है। अर्थात जब ये पांच प्रश्नों का आप जवाब ढूंढते हो तो उसके बीच में दूसरे कोई विचार नहीं आते हैं, तब कहेंगे आप विदेही बन गए, अशरीरी बन गए, आत्मिक स्मृति को आपने जागृत किया। अगर उसके बीच में दूसरे कोई विचार आते हैं तो अभी भी शरीर के भान है तो शरीर का विचार आता है। तो मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया, सहज है। लेकिन यह सहज ही बहुत कठिन है। ये पांच प्रश्न देखने में आता है, अगर आप पांच प्रश्नों का जवाब देते उसके बीच में और कोई विचार नहीं आता है तो आप विदेही बनते हो, मन बुद्धि एकाग्र हो गया। यह स्वयं का अभ्यास है। तब बाबा ने कहा, बच्चे ये स्वयं का पुरुषार्थ है, अपने हाथ में आए। इसमें आप कितना समय दे सकते हो, पांच मिनट, दस मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, जब योग में बैठते हो पूरी मन यहां से परम धाम तक मन और बुद्धि एकाग्र होती है, दोनों यहां से परम धाम तक यात्रा करते हैं, तो जितना समय परम धाम में मन बुद्धि एकाग्र होती है तो वहां बाबा सर्वशक्तिवान है। बाबा के आठ शक्तियां हैं, एक एक शक्ति ले लो और अपने आप से कंपेयर करो, बाप कौन और मैं कौन, बाबा के पास कितना परसेंटेज है और मेरे पास कितना है। कहते हम बाप समान, कहते हैं हम बाप समान थे, कब थे, यहां आने से पहले परम धाम में थे, तो वो अनादि स्मृति को जागृत करना है, वो वहां थे तब कैसे थे और अब कैसे हैं। इन दोनों को आप कंपेयर करते हो, इसमें अगर आप रोज सवेरे आधा घंटा और शाम को आधा घंटा बैठते हो, इसको कहते हैं तपस्या। ये जरूरी है, ये स्वयं का पुरुषार्थ है। तब बाबा ने कहा, स्वयं के पुरुषार्थ से कितनी शक्ति जमा की आपने, तब संसार में चलते हुए कोई गुस्सा करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई और कुछ करता है, सब होगा। अगर हम विधि पूर्वक योग करते हैं अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है, तो ये अष्ट शक्तियां संसार में जो कुछ बातें आती है कहीं समाना पड़ता है, जानते हैं, समझते हैं, समा लेना पड़ता है, कहीं जगह पर सहन करना पड़ता है, कहीं जगह पर एडजस्ट होना पड़ता है। तो ये सारी शक्तियां कहां से आएंगी? तो बाबा ने कहा कि हमें पता है हमको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतने पक्के संस्कार बन गए हैं, न चाहते हुए परिस्थिति आते ही शब्द निकल जाता है, तब कहते हैं स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, स्वयं पर शासन नहीं है, तो किसका शासन होगा? अगर बुद्धि समझदार है, शक्तिशाली है, मन को या पुराने संस्कारों को कंट्रोल करती है, और ये स्वयं का पुरुषार्थ है। तब बाबा ने कहा कि स्वयं के पुरुषार्थ से कितनी शक्ति जमा किया है ये चेकिंग करो, कितना परसेंटेज अपने आप को मैं सहन कर सकता हूं, समा सकता हूं, किधर भी एडजस्ट हो सकता हूं, कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम सामना कर सकते हैं नम्रता से, तो ये चेकिंग चाहिए। और सब कुछ करने के बाद अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं, उसके प्रभाव से कितना परसेंटेज मुक्त हो सकता है। ऐसे ही दूसरा है, ये स्वयं के पुरुषार्थ के अंदर है, पढ़ाई हमारे हाथ में है, सभी सवेरे मुरली सुनते हैं, मुरली सुनने के बाद सारे दिन में मुरली का उपयोग हमने कितना किया। अगर मुरली के एक भी पॉइंट ले लो आप, क्योंकि हर मुरली में चार सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से जो आपको अच्छा लगता है एक मुरली के पॉइंट, कल बाबा ने कहा था कि ज्ञान धन है, ये इस ज्ञान धन से आप जितने चाहे संपत्ति को जमा कर सकते हो, तो ये ज्ञान धन रोज बाबा देता है। जैसे देखो आप घर से बाहर निकलते हो, खाली जेब कभी भी नहीं जाते, जेब में कुछ धन होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ेगा। ऐसे हम घर से जब बाहर निकलते, ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे जेब में आज के एक मुरली का पॉइंट होना चाहिए, रोज का रोज, क्योंकि रोज रोज बाबा देता है। जब भी समय पड़ा, याद नहीं आई, जेब निकाल के देख लो आज बाबा ने क्या कहा था। बात चल रही थी कि रोज हमारे पास अगर ज्ञान धन है, रोज मुरली के एक एक पॉइंट, जब भी परिस्थिति कुछ आता है, कुछ विचार आता है, तुरंत निकाल के अगर आप पढ़ते हो तो नेगेटिव के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो पॉजिटिव चाहे उस समय अगर आप याद करो तो याद नहीं आता है कि संसार में बहुत सारी बातें हैं। तो रोज की मुरली का एक पॉइंट ले लो आप, अपने जेब में है, और उससे भी इस एक शब्दों से, एक बाबा के मुरली के पॉइंट से, जो बाबा चाहता चारों सब्जेक्ट की धारणा चाहिए अपने आप हो जाती है। और एक नई तरीका है, हमने भी देखा इस साल कि एक मुरली के पॉइंट बस, बहुत भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोज बाबा नए नए मुरली के पॉइंट्स बताता है। और आप देख लो सारे दिन के अंदर कितने आपको लोग फोन करते हैं, कितने लोगों से मिलते हो आप, तो जो आज मुरली के पॉइंट सुना अपने आप धारणा नहीं होती है, सुनने से धारणा नहीं होती है, सुनने के बाद और चार काम करना पड़ता है। तब बाबा ने कहा था ज्ञान धन को अविनाशी बनाओ, ये खजाना है, सारे कल्प में काम में आएगा। ये तो कैसे बनेगा वो, तो मुरली जब सुनते हो एक मुरली के पॉइंट नोट करो, और इधर बैठे ही उसके ऊपर जब भी समय मिलता चिंतन करो थोड़ा सा, और यहां से जब बाहर जाते हो, जब कोई भी मिलता, बाबा के बच्चे मिले, कोई भी हो, मुख से वर्णन करो, जरूर उनको सुनाना कि आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। अगर कोई मिला नहीं, किसी ने बाबा के बच्चे हो या बाहर का भी किसी ने आपको फोन किया, अच्छी तरह से बात करो, लास्ट में आज का एक हीरा उनको दान करो, ज्ञान रत्न है ये। अगर बाबा के बच्चे हैं तो उनको बात कर लिया आपने, लास्ट में कहो कि आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। जो उसने आपको इधर उधर की कोई बात सुनाया, नेगेटिव बातें आई आपके मन से, आपने क्या इमर्ज किया, पॉजिटिव किया, जो उस नेगेटिव का प्रभाव था वो व्हाइट वॉश हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन के अंदर पॉजिटिव जागृत हुआ, अच्छे विचार करते हो, नेगेटिव का प्रभाव अपने आप चला जाता है। लेकिन ये इतना संभव नहीं है, उस समय हमें याद होना चाहिए, लेकिन याद रहता नहीं है, मुरली उस समय याद नहीं आती है। इसलिए का अभ्यास डालो, आज के मुरली के पॉइंट जेब में अगर आपके साथ है, बात करते करते निकाल के तैयार करो, इनको मुरली सुनानी है, पहले से तैयारी। तो ये करते हो आप, तो आपके मन के अंदर भी चिंतन चलता है। देखो सारा दिन में अगर आप दो तीन लोगों को भी आपने सुनाया, सवेरे एक, शाम को एक, रात को आपको याद आएगा, हमने आज दो तीन भाई बहनों को सुनाया, लेकिन मैंने इस पॉइंट का आज उपयोग नहीं किया, आपको खाएगा। स्वयं को रियलाइज करने के लिए भी, महसूस करने के लिए भी हम औरों को सुनाना चाहिए, तब रियलाइज होता है, तब अपने आप आज की मुरली के पॉइंट आपको धारण होगा। अगर कल आपने नहीं सुनाया किसी को, कोई आपको पूछेगा आज की मुरली के पॉइंट सुनाइए, अरे आज मुरली सुनी नहीं, हमने याद ही नहीं है, तो अपने आप सामने वाला व्यक्ति आपको जागृत करता है, आपको जागृत करता, बताता है कि आपने आज ध्यान से नहीं सुना, आपको याद ही नहीं है। तो आप पहले से जागृत होते हो कि मुझे आज कोई पूछेगा सुनाना है, कि नहीं तो आज संसार में मनुष्य इतना व्यस्त है मुरली सुनते हुए भी याद नहीं रहता है और अपने आप याद रहेगा भी नहीं। हमारा मन या बुद्धि इतना स्वच्छ नहीं है। तो स्वच्छ करने के लिए बाबा ये विधि बताता है, बच्चे बुद्धि के अंदर ये ज्ञान के पॉइंट रखो, धारण रखना चाहिए लेकिन कैसे होता ही नहीं है। तो उसका ये तरीका है प्राइमरी लेवल में कि नोट करो, सुनो, नोट करके रखो, एक हफ्ता रख दो बस, फिर अपने आप आदत बन जाएंगी। और मुख से सवेरे, दिन में, शाम को दो तीन दफा तो किसी ना किसी को जरूर सुनाना चाहिए, अपने आप आदत बन जाए। कितने लोगों का फोन आता है आजकल, मोबाइल सबके पास है। हाँ, साधनों का उपयोग करो, साथ साथ सेवा में भी लगा दो उसको। अगर आप किसी को मुरली के पॉइंट सुनाते हो जिसके मन में गलत विचार चलता है, कोई परिस्थिति है, उसको क्या मिलेगा? ये एक संजीवनी बूटी है। बेहोश व्यक्ति को भी आप होश में ला सकते हो। चलो, उसने उपयोग नहीं किया, आपको तो बार बार स्मृति में आया, आपके अंदर तो धारणा हो गई है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा यह स्वयं का पुरुषार्थ है। इसमें आप जितना अपने आप को खड़ा कर सकते हो, जितनी कमाई कर सकते हो, जितने भाई बहनों को आज आप सुना सकते हो, चाहे अज्ञानी भी हो, उनको ये नहीं कहना बाबा ने कहा था, उनको कहना कि आज मैंने बहुत अच्छा किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको सुनाना चाहता हूं। हां, सुनाइए, सुनेगा, अच्छा लगा तो उपयोग करेगा, नहीं लगेगा तो छोड़ देगा, कोई हर्जा नहीं। लेकिन आपका तो रिपीटेशन हुआ, तो सुनने से आचरण में नहीं आता है। बार बार रिवाइज करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए। तो ये किससे आप रिपीट करेंगे? एक बहुत सुंदर तरीका है कि समय परिस्थिति के अनुसार हमें युक्तियां चाहिए, ज्ञान हमारे बुद्धि में सदा एमर्ज रहे। ये ज्ञान को बाबा कहता है ये अस्त्र है। अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस समय अस्त्र का प्रयोग कर सकते हो। अगर बुद्धि के अंदर स्मृति नहीं, याद ही नहीं है, तो वो परिस्थिति हमें क्या करेंगी? हमारे परिवार करेंगी। इसलिए ज्ञान को अस्त्र भी कहा, ज्ञान को शक्ति भी कहा, ज्ञान एक पवित्र जल भी है, ज्ञान एक पवित्र अग्नि भी है, सबको पापों को भस्म भी करता है, लेकिन स्मृति में चाहिए। तो इसलिए मुरली को किस विधि पूर्वक हम पढ़ते हैं वो जरूरी है। दो बातें जरूरी है, ये स्वयं के पुरुषार्थ के अंदर है। जो हमारा मन बार बार आकर्षित होता है कि चेहरा प्रसन्न नहीं रहता है, क्यों? आकर्षण है, इच्छा है। आज मनुष्य इधर उधर देखता है, किसी के पास देख लो आप, नया मोबाइल आ गया, और किसी के पास कार है, और किसी के पास ये कपड़े हैं, किसी ने बहुत सुंदर बैच पहना, किसी को देखते ही आकर्षण होता है, अरे मुझे ऐसा बैच चाहिए। तो ये इच्छा क्यों हो रही है? मन खाली है। अगर मुरली का पॉइंट मन में है, आप वस्तु, व्यक्ति सब कुछ देखेंगे, कहीं भी आकर्षित नहीं हो जाएंगे, कि ये धारणा अपने आप धारणा नहीं होती है। तो इसलिए हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर रोज के एक बाबा कितनी मेहनत करके कितनी सुंदर मुरली के पॉइंट सुनाता है, किसके लिए? ये भक्ति मार्ग जैसा नहीं, सुना और यहां का यहां छोड़ के चले गए। हमारे अंदर आदत है, अभी भी सुनना सब चाहते हैं, भागा दौड़ी करके बहुत दौड़ दौड़ के आएंगे सुनने के लिए। और सुन करके जब बाहर जाते, आप किसी से पूछना, सब बाहर जाते, आज बाबा ने क्या सुनाया था? बहुत अच्छा सुनाया था। क्या था वो बताओ? एक भी पॉइंट रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग की आदत है। ठीक है, भावना चाहिए, लेकिन भावना के साथ साथ अगर कुछ उन्नति करना चाहते हो, भावना के साथ विवेक का भी उपयोग करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग चाहिए, नहीं तो भावना अधूरी है, इनकम्प्लीट है। तो दोनों शक्तियां चाहिए। अगर स्मृति में है, कर्म कर रहे हो आप, किसी प्रकार के भी कर्म करो, बहुत समय होता है हमारे पास। जब ट्रेवलिंग करते हो आप, कार में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, पैदल जाते हो, मन खाली मन किसी को देखते ही देखना आप क्या क्या सोचता है। तब का खाली मन शैतान का काम करता है, करेगा भी, उसका काम है। इसलिए मन को बिजी रखने के लिए बाबा रोज नए नए मुरली के पॉइंट्स देता है। और रोज सुनते समय आप सिलेक्ट करो आज नया पॉइंट्स क्या है, वो सिलेक्ट करना आप। रोज बाबा इतना सुनाता है, अभी देखो एक दो तीन महीने पहले बाबा ने बहुत सुंदर नया पॉइंट सुनाया था, बच्चे ये इस बैच के अंदर पांच चीजें हैं, आपको लगेगा कभी सुना ही नहीं है, अगर ध्यान से सुनो रोज एक एक मुरली के अंदर एक एक नया पॉइंट है। बाबा ने कहा इस बैच के अंदर पांच चीजें हैं, कौन सी है वो? बाबा ने कहा फूल, फल, हीरे और जवाहरत और महल, ये सब इस एक बैच के अंदर है। आप सोचना इसको, इस बैच के अंदर क्या चीज है ये, क्यों बैच पहनना चाहिए? फूल भी है, देखो फूल अगर आप बैच पहन के कहीं भी जाओ तो फूल देके सम्मान करते ना, अगर आपका बैच देखते ही कोई भी सामने वाला आपको अपने आप सम्मान करेगा, इसकी ताकत है। तो किसने बैच पहना है हमको, ये कोई मेडल नहीं है ये। तो इसके लिए बाबा रोज मुरली के पॉइंट, मुरली के अंदर कुछ ना कुछ नए नए पॉइंट सुनाता है। हमारा ध्यान चाहिए, अटेंशन चाहिए, इंटरेस्ट, नहीं तो देखा आजकल मुरली के अंदर इंटरेस्ट नहीं है। हाँ वो सुना, आत्मा समझ को बाबा को याद करो, हाँ रोज का पॉइंट है। बाबा कहते हु बहु रिपीट होने वाला है ड्रामा, जो हुआ था वही होगा, करना क्या है फिर? हाँ दैवी गुण धारण करना चाहिए, वही का वही, हाँ सुन लिया है, नोट भी नहीं कर सकते हैं, क्यों? हमारे पास बहुत नोट किया हुआ है तो इतना हल्का हो जाते हैं। तो ये पढ़ाई है, यही पढ़ाई हमको ऊंच पद देगा। इसलिए मुरली सुनते समय बहुत जागर, नींद भी आती है, आंखें अपने आप बंद होती, कारण हम बहुत हल्का लेते हैं, रोज का समझ के लेते हैं। मुरली सुनते समय अगर नींद नहीं आना चाहिए, जागृत होना चाहिए, बाबा आज नया क्या सुनाएगा, आज की पुरली मुरली के अंदर मुझे नया पॉइंट लेना है, तो अपने आप अलर्ट हो जाते हुआ जागृत रहते हैं और नया पॉइंट ढूंढेंगे। ये बात बाबा ने कभी नहीं सुनाई थी, आज सुनाई, और आपके अंदर उमंग उत्साह रहता है कि मुझे इनको सुनाना चाहिए, उनको भी फोन करके सुनाओ। रोज आप 5-10 नंबर नोट करके रखो, आज के मुरली के पॉइंट मुझे इनको भी सुनाना चाहिए, इनको भी सुनाना चाहिए, और जितना सुनाते हो आप उमंग उत्साह से, आपका भी आपकी भी धारणा होती है औरों की भी सेवा होती है। घर बैठे और कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑफिस में 10 घंटे काम करो आप, सेवा करने के लिए अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी से फोन आता है अच्छी तरह से बात करो, आज के मुरली के पॉइंट हर एक व्यक्ति को सुनाना ही है, ये एक अंडरलाइन करके रख दो। तो घर बैठे आपका कमाई है ना, बाबा ने कहा सेवा भी चाहिए, सेवा के बगैर सेवा, आप कहेंगे हम क्या सेवा करें, नंबर वन सेवा है। तो ये है स्व पुरुषार्थ से योग, फिर ज्ञान, ज्ञान से आप अपने अपने हाथ में है ये, इस पर कुछ किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सेंटर में बहन जी ने सेवा ही नहीं दिया है, मैं कैसे समझाऊं, मैं किसी की भाषा जन नहीं जानता हूं, कोर्स कैसे कराओ, जरूरत नहीं है, किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है, दो चीजें ये। तब बाबा ने कहा सेवा के इसके द्वारा, स्व पुरुषार्थ के द्वारा कितना खजाना जमा किया हमने, एक। दूसरा बाबा ने कहा स्वयं संतुष्ट और सामने वाले को भी संतुष्ट करना है, चाहे उसने कितना भी मुझे असंतुष्ट किया है, 100 दफा किया है, उसका अपना धर्म है, अपना लक्ष्य है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, उनका अपना धर्म है, अपना लक्ष्य है, लेकिन मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, उस पर हमें अटल रहना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति के व्यवहार कर्मों को देखकर हमें अपना जो लक्ष्य है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ये परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। सामने वाला कैसे भी करे, कितना भी 100 दफा भी करता है, लेकिन मेरा जो धर्म है उसमें सदा स्थिर रहना चाहिए। तब कहा स्व का धर्म सुख देता है, तो स्वधर्म कौन सा है, वो धर्म को धारणा कहते हैं। हमने क्या धारणा रखी है, मेरे सामने कोई भी कैसा भी, जिसने मुझे 100 दफा इंसल्ट किया है, 100 दफा मुझे असंतुष्ट किया है, बार बार मुझे उसने गुस्सा किया, हां किया है जरूर, नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा धर्म क्या कहता है, इसमें हमें दृढ़ रहना चाहिए। ये दृढ़ता स्वयं को भी सुख देंगी और सामने वालों को भी, अपने आप परिवर्तन। मैंने उसको इतना इंसल्ट किया, इतनी दफा असंतुष्ट किया, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे गलत शब्द बोला नहीं, कभी भी हमने किसी प्रकार का सहयोग मांगा तुरंत दिया है, तो वो महसूस करता है, और ये उसको परिवर्तन करने का साधन बन जाता है। अगर औरों को परिवर्तन करना भी चाहते हो आप, कि बाबा ने कहा स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा, स्वयं को परिवर्तन, हम इसका विरुद्ध करते हैं। हम क्या चाहते हैं? दूसरे इसका परिवर्तन होना चाहिए। अभी भी इन्होंने गुस्सा छोड़ा नहीं है, 10 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, अभी भी गुस्सा इनसे गया नहीं है। हम दूसरों का गुस्सा छुड़ाना चाहते हैं, ये पहला है। ये गलत है, ये नहीं होगा, ये हमारा काम नहीं है, ये उसका काम है। पर स्वयं को उनको परिवर्तन करना, अपने को परिवर्तन उसका काम है, लेकिन मेरी पहली जिम्मेवारी है मुझे परिवर्तन करना है। तब बाबा ने कहा स्व का दर्शन वो छोड़कर हम औरों का दर्शन करें, इनका अभी तक चेंज नहीं हुआ है ना, ये सही नहीं है। तो बाबा ने बहुत दफा कहा स्वयं का परिवर्तन, तो लक्ष्य पक्का हो, स्वयं संतुष्ट जो भी है, जैसा भी है, जितना भी मिलता है, कि मेरे भाग्य में जो है वही मिलेगा ना, मैंने जितना पुरुषार्थ किया उससे कोई भी कुछ ले नहीं सकता है, कोई ले सकता है? चाहे लाख कोई कुछ करे तो इस कमाई से कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें हमें निश्चित रहना चाहिए, अपने रास्ते पर चलो, स्वयं संतुष्ट, जितना जो मिलता है, जिसको जहां बैठने मिलता है, जितना मिलता है पहले से करना है। परिस्थिति जब आती है उस समय नहीं होगा, इन एडवांस हमें अपने आप को पाठ पढ़ाना है कि मेरे सामने ये परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा करे, कोई ऐसा बोले, तो मुझे क्या करना चाहिए। पहले से अपने आप को पढ़ाओ, अगर तैयार रखते हो। संसार में चलते हुए बहुत आपको रोज सम्मान देते थे, एक दिन नहीं देंगे, एक दिन आपके लिए पूछेंगे भी नहीं आपको, अरे मैं जो सदा रोज आगे बैठो कहते थे, सम्मान देते थे, आज पूछते भी नहीं है, आज कुछ भी नहीं कहा, तो तुरंत हमारे बैटरी डाउन हो जाती है। क्यों? हम इन एडवांस पहले से प्रिपेयर नहीं है। तो अपने आप को पाठ पढ़ाना है, दूसरों को पाठ पढ़ाने का समय नहीं है ये, तो स्वयं को पढ़ाना है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करना है, ये लक्ष्य जितना आपसे साध्य है। फिर तीसरा बाबा ने और एक कहा कि सेवा से औरों से दुआ ले सकते हो आप। जिस प्रकार की तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से जितने आप सेवा कर सकते हो उतना सेवा करो। अगर आप कहेंगे मैंने सेवा करने से इनके ऊपर उपकार किया, नहीं, बाबा को नहीं चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। हम जो भी सेवा करते तन से करो। बाबा ने इसके लिए भी कहा हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस अपने आप नहीं मिलेगा। आप कहेंगे हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा मुझे वर्षा दे देगा, दे देगा? सभी को मिलेगा? बाबा के बच्चे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी को मिलेगा? मिलेगा, लेकिन परसेंटेज है। इसलिए कलयुग और सत्युग में अंतर यही है, अभी किसी के पास बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार, क्या है, दिमाग ठीक नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास बहुत धन है लेकिन शरीर सदा बीमार है, इन तीनों में इम्बैलेंस है, इसको कहते हैं कलयुग। सत्युग कैसे होगा? जहां तीनों में बैलेंस है, हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। लेकिन ये कैसे मिलेगा? तो उसका भी फाउंडेशन संगम युगी है। संगम युग पर अगर आप एक बीज बोते हो 100 दाना लगते हैं, धरती का नियम है, एक बीज जरूर बोना चाहिए, बिना बोए हुए आपको 100 दाना नहीं लग सकता है। और जो करते हो, आप कहेंगे गेहूं का बीज बोलो तो चावल का दाना लगेगा? नहीं। जो करते, इस शरीर के द्वारा जितने आप ईश्वर की सेवा करते हो, शिव बाबा की, यज्ञ की सेवा करते हो, चाहे मधुबन में करो, चाहे सेंटर में करो, चाहे कहीं भी करो, लेकिन सेवा करते समय एक बुद्धि में रहे कि शिव बाबा की श्रीमत के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूं, एक का पदम गुना जमा होगा। नहीं, बहन जी ने बोला था, इस भाई ने कहा था, अगर किसी को बुद्धि में रखकर कितनी बड़ी भी सेवा करते हो एक का एक गुना जमा होगा। सेवा करते समय बुद्धि में कौन है, किसके श्रीमत के अनुसार करते हो आप, वो देगा ना। अगर सेवा करते समय बुद्धि के अंदर यह स्मृति है शुभ बाबा की श्रीमत के अनुसार, बाबा की सेवा कर रहे हैं और बाबा ने वादा किया बच्चे एक का पदम गुना जमा होगा, तो जमा करने की भी विधि है। सर हरेक व्यक्ति सेवा करता है, लेकिन हमारे सामने सेवा करते हुए व्यक्ति सामने आता है तो एक का एक गुना जब सेवा करने के बाद भी चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं रहती है, खुशी नहीं रहती है, नहीं तो सेवा क्या करता है वर्तमान में भी और भविष्य में, वर्तमान में तुरंत इंस्टेंट फल है ये, तुरंत खुशी देती है। तब समझना आप किसी प्रकार झाड़ू भी लगा दो, आप किसी प्रकार भी सेवा करो, अगर वो सेवा करने से आपको अंदर से संतुष्टता मिलती है तब समझना हमने आज बाबा को याद करके सेवा किया था। अगर आपने सेवा किया और करते समय किसी ने कहा, किसी व्यक्ति के प्रभाव में आके कुछ किया, कोई इच्छा रख करके सेवा किया, तो देखना वो करने से आपको लगता है थक गया, आज बहुत सेवा किया थक गया। अगर थकावट महसूस होती है तो हमारे बुद्धि में और कोई था। तब बाबा कहता है सेवा तुरंत फल देती है, लेकिन तब देती है तुरंत दुआ मिलता है। तो तब बाबा ने कहा सेवा से जमा का खाता कितना जमा किया है, तन से मन से। मन की विधि बताए आपको, एक मुरली के पॉइंट अगर आप किसी को सुनाते हो कितना खुश होता है सामने वाला व्यक्ति, और आपको भी खुशी होती है, देखो आज समय पर मुझे मुरली के पॉइंट याद आया, आप भी खुश होते तो सामने वाला भी खुश होता है। तो ये तीन प्रकार है कि जमा कर कितना परसेंटेज आपने जमा किया आप देख सकते हो और आपके हाथ में है। तब बाबा ने कहा वर्तमान संगम पर, और खास इस साल बाबा ने कहा कि बाप बच्चों का देखना चाहते हैं चेहरा कितना प्रसन्न रहता है, चलन कितनी दैवी चलन है हमारी। अगर आज ये संस्कार है वहां जाके ऐसा संस्कार से संसार बनता है, ज्ञान से संस्कार नहीं संसार बनता नहीं है, ज्ञान सुनने के बाद संस्कार भरना पड़ता है। तो यहां हमारी चलन चाहिए, नहीं तो देख लो कहीं भी जाओ आप क्यों में खड़े होते हो, खाना लेने खड़े होते हो, बीच में घुस जाते हो, नहीं ये चलन नहीं है। हां भले सामने जो सामने खड़े हमें भी क्यों में खड़े होने चाहिए, नियम है। अगर वो नियम तोड़ते हो सामने वाले के मन में विचार आता है अरे ये तो बीच में आके घुस गया, लेट में आप पीछे आया और एकदम आगे चला गया, हम बहुत समय से खड़े हैं यहां ही खड़े हैं, तो दूसरों के मन में विचार चलता है, दुआएं मिली क्या मिला, तो बद्दुआ मिलती है। तो सेवा हर जगह पर सेवा है, और सेवा इतनी बड़ी सेवा करते, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि बहुत बड़ा एक हिंदू महासभा के अध्यक्ष है जो दिल्ली में चक्रपाणी करके है, यहां दो दफा आए, उन्होंने एक अपना अनुभव सुनाया बहुत सुंदर कि दिल्ली में बहुत बड़ा उनके कारण कुछ चल रहा था प्रोग्राम, तो एक अपना भाई इन्विटेशन देने गया था मधुबन में प्रोग्राम के लिए बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा दो मिनट है ना मैं अभी इधर अंदर जाके आता हूं। तो एक बार अंदर गए तो दो घंटा लगे उनको बाहर आने के लिए, और दो घंटे के बाद बाहर आए तो वो व्यक्ति स्वयं ऐसे जैसे पहले मुस्कुराते हुए भाई स्वामी जी ऐसे करके बात कर रहा था, दो घंटा खड़ा करने के बाद भी जब बाहर आते उसी मुस्कान उसी रिस्पेक्ट से, तो इतना हर्षित होकर के बात करने लगा। तब उनके मन में एक विचार आया इस व्यक्ति को मैंने दो घंटा खड़ा किया तो भी उसके चेहरे पर किसी प्रकार की दुविधा नहीं है, वही प्रसन्नता जो दो घंटे पहले थी। अगर एक व्यक्ति के सामने अंदर इतनी धारणा है तो वो संस्था कैसी होंगी। उसी समय उन्होंने संकल्प किया कि संस्था को देखने जाना चाहिए अवश्य, चाहे कितना भी मैं बिजी हो जरूर जाऊंगा, और उसी समय उनको कहा उसने मैं जरूर आऊंगा, और कितना बिजी थे कहां से कहां आकर के आके उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, इस एक व्यक्ति के चलन को देखकर मैं आज यहां आया हूं, एक व्यक्ति की चलन देख करके आज मैं किस लिए आया हूं कि संस्था के अंदर किस प्रकार की पढ़ाई होंगी, एक व्यक्ति को क्या पढ़ाया संस्था ने। तब बाबा कहते हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, मेगा प्रोग्राम ये कितना करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति आज देखना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है, बहुत कुछ सुन लिया, कभी हमें इतना अलर्ट रहना पड़ता, हम कैसे बोलते हैं बाहर जाते हैं, ट्रेन में ट्रेवलिंग करते हैं, मार्केट में जाते हैं, रस्ते पर जाते हो, हमारी चलन कैसी है, तो ज्ञान हमारे आचरण में कितना परसेंटेज आया है, 1%, 10%, 50%, वो किस आधार से होगा? ये तीन बाबा ने कहा कितना खजाने जमा किया है। अगर ज्ञान सुनते समय अच्छी तरह से विधि पूर्वक सुनते हो, नहीं तो देख लो आप मुरली सुनने बैठते हैं, कोई आया उसको दे रहे मुरली सुनने बैठे कि उनको देखने बैठे हो, वो तो वॉचमैन का काम होता है, यहां बैठे इधर उधर, मना हमारा अटेंशन है। स्कूल में भी देखो टीचर कहता था कहां देख रहे हो, अगर जिसको पढ़ाई पढ़ने के लक्ष्य है आगे आगे बैठता है और पूरा पढ़ाई पर ध्यान देता है, पूरी एकाएक एक शब्द अंदर ग्रहण करता है, क्यों लक्ष्य है। तो हमारा भी, हम मधुबन में बाबा के पास क्यों आया है, ये पक्का घूमना इधर उधर जाना वो तो करेंगे सदा ही, तो यहां आए हैं सब प्रकार की झोली भर के जाना है। कोई आ रहा है जा रहा है, हमको क्या करना है, हमारा पढ़ाई के अंदर इतना ध्यान हो, योग में बैठे समय पर आराम से आके स्वतंत्र बैठ जाओ, कोई बैठा इधर नींद कर रहा है हमको क्या करना है, वो जो चाहे करने दो, उनके वाइब्रेशन भी हमें इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि बिजी है। अगर मन बुद्धि खाली है तो दूसरों का प्रभाव हमारे पर पड़ता है, अरे सामने वाला ये नींद कर रहा था इसलिए मेरा योग नहीं लगा है, हमारा योग उन पर डिपेंड है क्या, हम तो बाबा को योग कर याद कर रहे हैं, है ना, तो ये महसूस नहीं करते हमारा मन खाली था तो दूसरे के वाइब्रेशन हम कैच कर रहे थे, बाबा के वाइब्रेशन कैच नहीं कर रहे थे। तो इसलिए कोई कुछ भी करने दो, कोई आ रहा है जा रहा है इतने बड़े संगठन में, क्योंकि हमारे पास एक देखा गया एक डिसिप्लिन नहीं है और भी, कि अगर हम अंदर आते हैं तो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, ये नहीं मुझे आगे जाके बैठना है, नहीं, जो लेट आता है उनको पीछे बैठना चाहिए। अगर बीच में अगर आप घुस के आते हो तो कितने लोगों को डिस्टर्ब करते हो, आप हिलाते हो, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ी डिसिप्लिन है। तो बाबा कहते हैं कैरेक्टर्स है, ये मैनर्स है, दैवी मैनर्स है। तो अगर मैं किसी के सामने जाता हूं तो उसको डिस्टर्ब करता, उसको हिलाया, किसी के सामने पीछे लेट आ करके आगे उसके सामने बैठते हो, कितने लोगों को हिला करके, कितने लोगों को, उनके मन में विचार चलेगा कि नहीं। तो बाबा ने इतना सूक्ष्म बताया, बच्चे आपके किसी के मन में अगर हमारे चलन से विचार भी आता है गलत, ये भी पाप है, कितने सूक्ष्म में ले जा रहा है। हम तो आगे बीच में आते हैं घुस करके कितने को हिला करके, तो कितने उनके विचार चलते हैं। तो ये भी चाहे सेंटर में चाहे यहां भी हो, तो अगर लेट आते हैं अपने जगह, हमारे कारण दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये दैवी गुण है, तो ये आचरण, इसी से हमारी चलन, बाबा ने कहा चलन देखना चाहता है, दैवी गुण कहां तक आए हैं, हमारे पास है कई लाने की जरूरत नहीं। आत्मा के 7 गुण है, अगर उसको रोज जागृत करते हो तो अवेयरनेस को कहा सेल्फ अवेयरनेस, नहीं तो हम बहुत साल हो गए ज्ञान में चलते हैं लेकिन अभी भी हमें भाषा पता नहीं है, दैवी भाषा है, चलन है। तब बाबा ने ये दो बातें कही, चेहरा और चलन, ये दो तभी होंगे हर्षित कि जितने खजाने जमा किया है उतना दिखाई देगा, अगर खजाना जमा नहीं है कितना भी आप हंसो वो आर्टिफिशियल लगेगा, दिल से नहीं है ना, आपको भी लगेगा आज हम भरपूर योग में बैठे, भरपूर अच्छा योग लगा, अच्छी तरह से शक्ति भरी, कोई भी इधर उधर के विचार नहीं आया, उसको कहा स्वयं संतुष्ट, सेल्फ कंटेंटमेंट, स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं संतुष्ट रहते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को देखकर आपकी असंतुष्टता कोई भी हिला नहीं सकता है, और आप उनको भी संतुष्ट करेंगे। तब बाबा ने कहा एक, स्वयं के पुरुषार्थ से कितना खजाना जमा किया है, दूसरा स्वयं संतुष्ट रहकर औरों को कितना संतुष्ट किया है, तीसरा सेवा कितना की, तन से मन से धन से, धन भी हम बाबा के सेवा में लगाते हैं लेकिन साथ साथ कुछ इच्छा भी रखते हैं, मैंने ये किया है मुझे सहयोग मिलना चाहिए, मैंने सेंटर बनाकर भक्ति मार्ग में आदत बनी हुई है, इसने 10 लाख रुपया दिया उनके नाम की प्लेट लगी रहती है, तो यहां भी चाहिए ना, नाम होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? तो कैसे होगा नाम नहीं तो किसने कितना क्या किया कैसे पता चलेगा? तो ये कच्चा फल खाना है। तब बाबा कहता है गुप्त दान, इस हाथ से दिया हुआ इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? तो क्यों, बाबा भी विचित्र है, हम आत्माएं भी विचित्र है ना? तो ये हमारा धन नहीं है, बाबा का ही है, और नहीं तो कल इधर छोड़ के जाना है, लेके तो नहीं जाएंगे। तो उसको किसी को बताने के लिए दिखाने के लिए नहीं। तब बाबा ने कहा एक का पदम गुना रिटर्न देगा, लेकिन धन से सेवा करते समय बुद्धि में रहे कि शुभ बाबा की यज्ञ की सेवा है। बाबा ने आके इस सृष्टि पर यह रुद्र यज्ञ रचा है, उस यज्ञ की सेवा कर रहे हैं हम ब्राह्मण, गुप्त होना। तब एक का पदम गुणा जमा होता है, देखना आप, और आपको भी अंदर से खुशी होती है। अगर दिखावा करते हैं ना तो देखना अंदर खुशी नहीं होती है कि कुछ ना कुछ इच्छा है उसके पीछे, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, मैं इतना सेवा करता हूं, बहन जी मुझे ओम शांति भी नहीं करती है, पूछती भी नहीं है, माना आप उसके लिए सेवा कर रहे हो, है ना? तो ये एक्सपेक्टेशन इच्छा संतुष्ट हो रहना नहीं देती है। इसलिए बाबा ने कहा कि चाहे ये 2-3 खजाने कितना परसेंटेज जमा किया वो चेकिंग करना चाहिए, उस आधार से हमारे चलन और चेहरा प्रसन्न रहेगा। ठीक है, ओम शांति।